हो रहे थे कि लगता था कि भगवान एक रस हैं और आंखें जिह्वा जैसे उसको पी रही, अर्थात पलक नहीं गिर रहे, एक टक श्री कृष्ण को देख रहे थे। तिब्बती वह न तो देखती वह कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते, वो देख रहे थे, ऐसा लगता था कि पी रहे, आस्वादन कर रहे थे। भगवान परम सुंदर हैं, परम मधुर हैं, वास्तव में सबके जीवन में वो एक दिन आवे जिस दिन भगवान को हम देखें और ऐसा लगे कि हम पी रहे। इतनी आंखों में लालसा थे कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तिब्बती हुआ, मानो पी रहे हैं, उद्विक्षत इस तरह से देख रहे थे। निर्निमेश नेत्रों से माँ अदिति भगवान को देख रहे थे और ऐसा लगता था कि आंखों से उनको पी रही है। हे कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, माता अदिति इस तरह से भगवान की स्तुति करने लगी, गदगदया गिरा। वो जब बोलना चालू किए भगवान के विषय में, जैसा आगे आएगा, जज्ञेश यज्ञ पुरुष अच्युत इत्यादि, तो गला गदगद था, पूरा पूरा उच्चारण नहीं हो पाता था, इस तरह से गदगद वाणी से स्तुति कर रहे। किनकी स्तुति कर रहे थे, किनको देख रहे थे? रमापति, यज्ञपति, जगतपति। सुखदेव गोस्वामी माता अदिति के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। वो सोच रहे थे यही रमा के पति, श्री जी जिनकी सेवा करती हैं, जो श्री के पति हैं, वही मेरे सामने प्रकट हुए हैं। वो सोच रहे थे, जैसे जैसे वो विचार करते हैं वैसे वैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, रमापति और यज्ञपति, यही भगवान यज्ञ के पालक हैं, यज्ञ का फल देते हैं। मैंने यज्ञ किया तो मेरे यज्ञ के कारण प्रकट हुए यज्ञपति, समस्त यज्ञों के द्वारा इनकी आराधना की जाती है, और जगतपति समस्त जीवों के भी पति, यही सर्वेश्वर। माता अदिति के मन में ये भाव हो रहा था, ये सर्वेश्वर हैं, लक्ष्मीपति हैं, यज्ञपति हैं। भगवान को देख करके भगवान के बारे में कुछ विचार तो उठेगा ही, ये क्या है, कौन है, इस तरह से विचार उठ रहे थे। माता अदिति गदगद वाणी में गदगदया गिरा, हरि की स्तुति कर रही है। यह भी भाव आ रहा है माता अदिति के मन में कि ये सब दुख हर लेते हैं अपने भक्तों का, सारा कष्ट हर लेते हैं, तो हरि शब्द आ रहा है, स्तुति कर रही है। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक ब्रजलोक समोदयाद्य शमन कृधीश भगवन्न सिदीननाथ। इसमें भगवान को कई संबोधन कर रहे हैं। भगवान सारा दुख हर लेते हैं, सारा मनोरथ पूरा करते हैं, इस विषय में भगवान की योग्यता और क्षमता को प्रकाशित करने के लिए माँ अदिति अनेक विशेषण दे रही है भगवान को। पहला शब्द निकला यज्ञेश, हे यज्ञेश, यज्ञेश, यज्ञेश का अर्थ है जो यज्ञ फल दाता, भगवान यज्ञ का फल देते हैं। यदि कोई यज्ञ करता है, भगवान की आराधना करता है, तो भगवान अवश्य फल देते हैं, वही फलदाता है। तो हमने जो यज्ञ किया, पयोव्रत किया, भगवान उसका वास्तव में फल दिए, प्रकट हो गए, यह भाव है। और यज्ञ पुरुष, यज्ञ के वास्तविक इष्ट, यज्ञ किया जाता है आपके लिए, तो यज्ञ पुरुष है, यज्ञ भोक्ता। पहले यज्ञेश का अर्थ है यज्ञ फलदाता, और यज्ञ पुरुष का अर्थ है यज्ञ के द्वारा आराध्य, यज्ञों के भोक्ता, भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। तो हे यज्ञेश, हे यज्ञ का फल देने वाले और हे यज्ञों के द्वारा पूजित होने वाले, आपको मैं प्रणाम कर रही हूं। सब समय प्रणाम दिया जाएगा, बाद में प्रणाम शब्द आया। हे तीर्थपाद, जिनके चरण में पैर में तीर्थ रहते हैं वे हैं तीर्थपाद, गंगा जी आपके चरणों से निकलेंगी। ये भविष्य में होने वाली लीला अभी मुख से स्फुरित हो रही है। जितने भी जगत में तीर्थ हैं, सबसे बढ़कर तीर्थ हैं गंगा जी, और गंगा जी भगवान के पाद से निकली, चरण से निकली, इसलिए भगवान को तीर्थपाद कहते हैं, तीर्थपाद। अतः जो व्यक्ति भगवान के चरणों की शरण लेता है वो परम पावन हो जाता है, परम पवित्र बन जाता है। सबसे बड़ा तीर्थ करना है भगवान का भक्त बन जाना चाहिए, वह जीव पवित्र हो जाता है। जब पाद संत्रयास होता मुनय प्रश्नायना सद्य पुनंत पस्पिष्ट स्वर्धुन ज्ञापन सेवय। तो गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं, आप परम पावन हैं, सारे तीर्थ आपके चरण से निकलते हैं, और तीर्थ श्रव आपकी कीर्ति श्रवा आपका यश ही सबको पवित्र कर देता है। चरणों से निकलने वाला जल गंगा जी पवित्र करे कौन बड़ी बात है, भगवान की कीर्ति जीवों को पवित्र कर देती है, और जुग जुग तक अनंत काल तक भगवान की कीर्ति इस जगत में रहेगी। इसका श्रवण कीर्तन करने से सारे जीव पवित्र होते रहते हैं। तीर्थ श्रव, श्रव का अर्थ जस कीर्ति, आपका कीर्ति ही जीव को तारने वाली है। श्रवण मंगल नाम ध्येय, नाम ध्येय, आपका नाम सुनने पर मंगल होता है। और इस अवतार में भगवान के और भी नाम बढ़ेंगे कई, त्रिविक्रम, उपेंद्र, बामन, बहुत ही सुंदर सुंदर नाम अब बढ़ेंगे। वैसे अनादि काल से भगवान के नाम हैं, लेकिन इंद्र का छोटा भाई बनने से उपेंद्र कहे जाएंगे, और त्रिविक्रम तीन पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नापने के कारण त्रिविक्रम कहे जाएंगे, और छोटे रूप में अवतार लिए थे इसलिए बामन कहे जाएंगे, और भी इनके कई नाम होंगे। और इन नामों को सुनने से ही मंगल हो जाता है। श्रवण मंगल नाम ध्येय, सुनने मात्र से मंगल करता है नाम, फिर गाने पर क्यों नहीं करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रवण मंगल नाम ध्येय, जीव के मंगल करने वाले जितने भी साधन शास्त्र में बताए गए हैं उनमें सबसे ऊंचा साधन है नाम संकीर्तन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो माता अदिति के मुख से यह सिद्धांत प्रकट हो रहा है, आपन्न लोक ब्रिजनोप समोदय आद्य, आपन्न अर्थ शरणागत, शरणागत जीवों के दुख का नाश करने के लिए आपका अवतार होता है। उदय उदय का अर्थ अवतार, आपन्न लोक ब्रिजन उपशम उदय, जितने भी शरणागत भक्त हैं भगवान के शरण में हैं, उनके उनके ऊपर कोई दुख आता है, ब्रिजन शोक होता है, तो भगवान उसका निवारण करते हैं। परित्राण आय साधुना, साधुओं का परित्राण करने के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो आप हमारा भी दुख दूर करेंगे, ये भाव है। लेकिन माता अदिति ने खोल करके नहीं कहा, भगवान को देखकर इतना आनंद हुआ, इतना सुख हुआ कि माता अदिति ने सोचा कि अरे मैं जो मन में विचार है उसको नहीं कहूंगी। तुच्छ बात है कि मैं यह कहूं कि हमारे पुत्रों को राज्य दे दीजिए, हमारे शत्रुओं का वध कर दीजिए, यह बात तो कहने में हिचक गई, नहीं कही। परंतु भगवान तो हृदय की बात जानते हैं, तो वे स्वयं ही चर्चा करेंगे। आद्य माता अति कह रहे कि आप आद्य हैं, या आप सबके जन्मदाता हैं। भगवान छह ऐश्वर्य से आप परिपूर्ण हैं, दीन नाथ है, आप दीनों के नाथ हैं, जो असहाय हैं इस संसार में, और यदि आपको नाथ के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप उनकी रक्षा करते हैं। तो न शम कृधि स, मुझे भी शांति दीजिए, सुख दीजिए। किस बात में आपको सुख है ये नहीं बताइए, इतना ही कहे हमको भी सुख दीजिए। आप सुख देने के लिए अवतार लेते हैं, आप सुखमय हैं आनंदमय हैं। तो न शम कृधि ईश, हे ईश हमें सम दीजिए, सुख दीजिए। देखिए कितना संबोधन कर रहे हैं, गिनी जग्गेश एक, यज्ञ पुरुष दो, अच्युत, अच्युत मैं छोड़ दिया, इसकी व्याख्या नहीं किया। आपकी कृपा से आपके भक्त कभी भी च्युत नहीं होते। तीन अच्युत, तीर्थपाद चार, तीर्थस्रव पांच, श्रवण मंगल नाम धे छ, आपन्न लोक ब्रजनोपम समुदय सात, आद्य आठ, ईश नौ, भगवान दस, दीननाथ ग्यारह। एक एक शब्द है, लेकिन एक एक शब्दों की बहुत व्याख्या की जा सकती है। भगवान के गुण दिए जा रहे हैं, ये है योग्यता। किसी सामान्य आदमी के गुणों का वर्णन कभी कभी लोग करने लगते हैं और भारी भारी पुस्तकें लिखी जाती हैं और बड़ी बड़ी सभा करके अभिनंदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। हमने देखा है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, और कैसे कितना अभिनंदन पत्र छापा जाता है, धारावाहिक प्रस्तुति करते हैं। आप इतने बड़े हैं, आप ये कार्य किए हैं, ये काम किए हैं, वो किए हैं, वो किए हैं, लेकिन भगवान की तुलना में तो ऐसे मच्छर जैसे भी नहीं है, कुछ नहीं। भगवान में तो अनंत गुण है, अनंत सामर्थ्य है, और अनादिकाल से वे ईश्वर हैं, अनंत काल तक रहेंगे। जीव का कर्तव्य है कि वो भगवान का गुण गावे। बहुत बहुत गुण हैं भगवान के, यहाँ तो केवल एक थोड़ा सा लिस्ट प्रस्तुत किया जा रहा है, इसकी व्याख्या छोड़ दी गई है भक्तों पर। वे इसको समझें, जग्गेश का क्या अर्थ हुआ, किस तरह से भगवान यज्ञ फलदाता है या यज्ञ भोक्ता है, तीर्थपाद है, ये है। आगे स्तुति करते हैं। विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय स्वैरम गृहीत पुरुषाति गुणाय भूमे स्वस्थाय स्वस्वदुपबृंहित पूर्ण बोध व्यापादितात्म तमसे हरये नमस्ते। सबसे बड़ा सुख इस संसार में है भगवान का गुण गाने में। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। सुख जब मिलने लगे गुण गाने में, तब तो समझिए कि अब कुछ कुछ ठीक साधना कर रहे हैं। माता आरती को बहुत आनंद मिल रहा है कहने में, विश्वाय, आप विश्व स्वरूप हैं, अर्थात इस विश्व के उपादान कारण आप हैं, आपकी शक्ति से विश्व बना है। विश्व में क्या क्या है, मुख्य रूप से मिट्टी, जल और अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच वस्तुएं हैं। लेकिन प्रश्न होगा कि ये वस्तुएं आई कहां से, तो भगवान से निकले, इसलिए भगवान को विश्व कहा जाता है। उनकी शक्ति ही इन पंचभूतों के रूप में परिणत हुई है। बारंबार श्रीमद् भागवत में भगवान को विश्व रूप या विश्व इस तरह से कहा गया है, सब सर्वत्र। तो शक्ति में और शक्तिमान में भेद नहीं है। जिस व्यक्ति से वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए कह दिया जाता है कि वह व्यक्ति ही इन वस्तुओं के रूप में है, ये वस्तुएं व्यक्ति नहीं है, ये कहने में अंतर होता है। अगर यह कहा जाए कि शाहजहां ताजमहल बन गया तो ठीक है, लेकिन ताजमहल शाहजहां है, ये ठीक नहीं है। ये कहा जाएगा, अगर यह कहा जाए कि भगवान ही विश्व के रूप में है तो ठीक है, लेकिन विश्व ही भगवान है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि विश्व से भगवान नहीं निकले हैं, भगवान से विश्व निकला है। अगर यह कहिए कि पुत्र जो है, ये कहा जा सकता है कि पिता ही पुत्र के रूप में है, लेकिन पुत्र ही पिता के रूप में, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि पुत्र है पिता का एक्सपेंशन है, ये कहा जाता है। आप कहीं फार्म भरने जाइए तो लोग पूछते हैं पिता का नाम, मतलब किससे जन्मे हो, लेकिन पिता से जरूरी नहीं पूछा जाए कि पुत्र का नाम भरो, कितने जन्मे हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं। किससे जन्म हुआ है ये जानकारी जरूरी है। तो केवल इस जन्म की बात हम लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में पूरा विश्व कहां से जन्मा है इसकी जानकारी किसी को नहीं। माम तो वेदन कष्ट, भगवान स्वयं कहते हैं कि हमको लोग नहीं जान। तो विश्व उत्पन्न हुआ है भगवान से, इसलिए भगवान ही विश्व के रूप में है एक प्रकार से, विश्वाय। और विश्व भवन स्थित संयमाय स्वयं गृहित पुरुष शक्ति गुणाय भूमि। विश्व भवन, विश्व स्थिति और विश्व संयम के लिए आप अपनी शक्ति के माया के तीनों गुणों को स्वीकार किए, अर्थात गुणावतार ग्रहण किए। भवन का अर्थ है भू से होना, विश्व की उत्पत्ति, इसको भवन कहते हैं। विश्व भवन और विश्व स्थिति, इसको पालन पोषण करना, इसको मेंटेन करना। आजकल आप लोग देख रहे हैं मेंटेन करना कितना कठिन काम हो गया है। अरे और जीवों को खिलाना पिलाना वो तो अलग की बात है, आप कोई घर बना लीजिए तो उसके लिए मेंटेनेंस लेते हैं। अपना घर है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन बस कुछ नहीं, केवल घर खड़ा है फिर भी मेंटेनेंस दे, है ना, देना पड़ता है। रचना तो भगवान किए ही, कितना उपकरण लगा इसमें, कौन कौन चीजें लगी, कैसे कैसे बना विश्व, वो वही किए हैं, लेकिन इसको मेंटेन भी वही कर रहे हैं। सबको कपड़ा देना, भोजन देना, जमीन देना, और सब कुछ जो कुछ जीवन की आवश्यकता है सब तो भूमि से उत्पन्न हो रही है, तो भगवान ने मेंटेन कर रहे हैं इसको, स्थिति कर रहे हैं। और संयम बना करके, ऐसा नहीं है कि भगवान कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिया है स्वतंत्र, सारा कंट्रोल में, संयम कहते हैं। इस समय तो कंट्रोल में है ही जगत, लेकिन एक दिन पूरा पूरा नष्ट कर देते हैं, कुछ भी नहीं रहता है, प्रलय हो जाता है। तो इस विश्व की सृष्टि करने के लिए और इसको चलाने के लिए और इसका संयम करने के लिए आप गृहित पुरुष शक्ति गुणाय, जो पुरुष शक्ति है, माया शक्ति है, उसके गुणों को, सत्व रज और तम को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। क्या फोर्स कोई करता है? नहीं, स्वयं अपनी इच्छा, भगवान की इच्छा होती है कि अब सृष्टि हो, बनाऊ, बना देते हैं, मेंटेन करो इतना दिन, इसके बाद बिगाड़ देते हैं, समाप्त कर देते हैं। स्वतंत्र है, कोई बाध्य नहीं है। इस संसार में देवता और मनुष्य सभी बाध्य हैं काम करने के लिए, ऑफिस अटेंड करने के लिए बाध्य हैं। बड़े बड़े पूंजीपति भी ऐसा नहीं है कि अपने घर में ही रह जाएंगे, बाध्य होते हैं ऑफिस देखना, ये करना, वो करना, ये करना, है ना। एक साधारण कारखाना को मेंटेन करने में कितनी चिंता होती है, बनाना चलाना, लेकिन संघार नहीं करते। माता पिता बच्चे को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते हैं। नहीं, भगवान जन्म देते हैं, पालते हैं, मारते भी वही है, भले उपाय जो कुछ करे मारने का, लेकिन मारते वही है। नियम बनाए हैं, मरने का नियम बनाए हैं, जीने का नियम बनाए हैं, जन्म लेने का नियम बनाए हैं। और स्वयं, स्वयं करते स्वतंत्र। तो यहां एक प्रश्न बनता है कि यदि भगवान विश्व की सृष्टि करते, इतने जीवों का भोजन देना, कपड़ा देना और सब कुछ, मकान देना, आगे पीछे का सब कर्म फल देखना, व्यवस्था करना, तो भगवान तो चिंता में पड़ जाते होंगे, ऐसा हो सकता है ना। तो भगवान को भी कभी कभी चिंता होती है, तो मां अदिति कह रहे नहीं, स्वस्थाय, आप इतना सृष्टि विस्तार करने के बाद भी स्वस्थ रहते हैं, बिल्कुल आनंद में रहते। भगवान कभी ऐसा नहीं कि व्याकुल हो गए, मार्केटिंग के लिए चलना चाहिए, ये काम करें, वो काम करें, ऐसे करें, वैसे करें। भगवान की बांसुरी अपने लोक में बजती रहती है, उनको कोई गम नहीं है। या वो शेष सज्जे पर सोए रहते हैं, स्वस्थ हमेशा है। इस संसार में कोई स्वस्थ नहीं रहता है, देवता भी नहीं रहता है। स्वस्थ का अर्थ है अपने में अस्थित रहना, स्वस्मिन स्थित स्वस्थ, जो अपने में रहे, तो चिंता ग्लानी शोक में न रहे, उसको स्वस्थ कहते हैं। तो संपूर्ण विश्व, अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि करके भगवान इसको मेंटेन करते हैं, चलाते हैं, संहार करते हैं, फिर भी स्वस्थ आनंद, कभी कोई चिंता में नहीं पाएगा भगवान को। कोई किसी भी लीला में देखिए, भगवान घबराए, घबराते नहीं, बिल्कुल ठीक। केवल एक बार उन्होंने लीला किया कि क्रोध में दिख पड़ रहे थे, क्रोधी नहीं थे, हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए। उसमें लगता था भगवान चिंता में हो गए हैं, ये हो गया हो गया, लेकिन क्रोध में हुए तो सब मार काट करके नख से इधर उधर सारा ठीक कर। तो भगवान ने चिंता में नहीं है, भगवान में और जीवों में कितना अंतर है देखना चाहिए। कभी कभी मनुष्यों को लोग भगवान कह देते हैं, यह बहुत बड़ी भूल है। और मनुष्य का फोटो देखिए तो चिंता क्या मर रहे हो, ईश्वर हो ना, भगवान हो और एक साधारण दुकान चलाने में ऑफिस चलाने में मर रहे ऐसे रह। और भगवान को देखिए जब भी प्रकट होते हैं बिल्कुल प्रसन्न में, या उनके घर में कोई जाए वैकुंठ में बिल्कुल प्रसन्न। जब भृगु जी तक परीक्षा लेने गए, भगवान के छाती में लात मारे, भगवान उठकर उनका पैर सहलाने लगे। भगवान को कोई उद्वेग नहीं हुआ कि अरे कौन आफत आ गई, कौन मारने लगा आप यहां पर किसी बड़े व्यक्ति को जाइए और लात मारिए तो क्या करेगा वो? तो यदि शरीर में शक्ति होगी तो उसी समय वो भी लात चलाएगा, हाथ चलाएगा, नहीं तो फोन करेगा, पुलिस को बुलाएगा, ये करेगा वो करेगा, सिक्योरिटी सिक्योरिटी दौड़ो दौड़ो, ये हो गया वो हो गया। लेकिन भगवान तो कोई नहीं घबराए, वो नहीं सोचो मैं तो इतना बड़ा हूं और आकर के साधारण ब्राह्मण मुझको लात मार रहा है, कभी नहीं सोचे, इसको धैर्य कहते हैं। और वहीं केवल प्रणाम नहीं करने से शिव जी एकदम खौफ हो गए, एकदम क्रोध में हो गए और जान मारने के लिए चल दिए भृगु जी। ईश्वर इसको नहीं कहते हैं, थोड़ी सी बात से बस उद्वेग हो जाए, ये हो जाए। ब्रह्मा जी भी रंज हो गए थे, शिव जी तो मारने ही चल दिए, लेकिन पार्वती जी ने रोक लिया कि आपके भाई हैं, छोड़िए मर्डर मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। तब जाकर के त्रिशूल रखे, इतना केवल प्रणाम नहीं करने से आग बबूला हो गए। अरे भगवान तो वह है कि कुछ भी हो जाए जिसकी शांति कभी भंग नहीं हो सकती, आनंद ही आनंद। उतना के वक्षस्थल पर थे लेकिन हंस रहे, सर एक बहुत जोर लगा कर चिंता में मारे पुतने को, हंस रहे थे। गोपियां जा करके पुतने के देह पर दौड़ करके कृष्ण को लाई, वे लोग उनकी रक्षा के लिए क्या क्या कर रहे थे, फिर वो तो हंस रहे थे भगवान ऐसे हैं, उनको स्वस्थ कहा गया। इतना बड़ा विश्व व्यापार स्थापित करके और भगवान बिल्कुल स्वस्थ अपने स्वरूप में, स्वस्थाय सस्व उपबृंहित पूर्ण बोध व्यापादितात्म तम से हरये नमस्ते। क्यों स्वस्थ हैं कि सस्वत नित्य ही भगवान की चित शक्ति भगवान का ज्ञान बना रहता है, नित्य बना रहता है। कभी भगवान का ज्ञान घटने वाला है न धन घटने वाला है, जैसे हैं वैसे सदा रहते हैं। और उस सत्य के प्रभाव से, उस चित शक्ति के स्वरूप शक्ति के प्रभाव से, व्यापादित आत्मतम से भगवान पर माया का असर नहीं हो पाता है, माया बहुत दूर रहती है। बल्कि ऐसे प्रभु का जो स्मरण करते हैं उन पर भी माया का प्रभाव नहीं रहता, यह अर्थ। भगवान का स्मरण करने वाले के मन में माया का प्रभाव नहीं आता है, राग द्वेष या चिंता नहीं होती है, भगवान में कहां से होगी। ऐसे सर्व भक्त दुख हरता हरि को मैं प्रणाम कर रही हूं, इस प्रकार से माता अदिति भगवान के गुण गा रही हैं। और अब बता रही हैं कि आप जब प्रसन्न हो जाते हैं तो जीव को कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है, आप कुछ भी दे सकते हैं। और फिर शत्रु पर विजय दे देना, ये तो कहना ही क्या, ये तो बहुत सामान्य बात है आपके लिए। कुछ कुछ इनके शब्दों में झलक रहा है कि ये शत्रु विजय चाहती हैं, लेकिन स्पष्ट भगवान से नहीं कह रही। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या क्या दे सकते हैं, एक श्लोक में कहती हैं, आयुः परम बपुरभीष्ट मतुल्य लक्ष्मी देवो रसा सकल योग गुणास्त्रिवर्ग ज्ञानं च केवलमनंत भवन्ति तुष्टा त्वत्तो नृणाम किमु सपत्न जयाधिराशि त्वत्तः तुष्टात् हे नाथ, जिस भक्त पर, जिस व्यक्ति पर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आपकी कृपा से उसे परम आयु प्राप्त हो सकती है। परम आयु का अर्थ ब्रह्मा जी के समान दीर्घ आयु। इस विश्व में सबसे अधिक दिन जीने वाले ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन किया गया है शास्त्रों में, वो है 1,54,40,00,000,000,000 वर्ष। यह उनकी जीवन अवधि, इतने वर्ष तक जीवित रहे। जो परम आयु का है, द्विपरार्ध तक जीवित रहते हैं। तो भगवान जो प्रसन्न हो जाते हैं किसी पर, और भक्त यदि चाहे कि मैं इतना दिन जीवित रहूं तो भगवान इतनी लंबी आयु दे देते हैं। अधिक दिन जीने की भी लालसा हो तो भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। और हम समझते हैं कि सबको ये लालसा होती है कि ज्यादा दिन जी जाए, है ना। अधिक दिन जी जाए, तो भगवान की कृपा से जीव अधिक दिन जीवित रहता है। परम आयु, जीने की लालसा वास्तव में सब में रहती है। चाहे कोई कितना भी झूठ बोले कि नहीं मैं मरना चाहता हूं, लेकिन वो बात सही है, कोई मरना नहीं चाहता, जीना सब चाहते हैं, अधिक से अधिक दिन जीना चाहते। तो यदि लंबी आयु चाहिए तो भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। मारना उनके हाथ में है और जिलाना उनके हाथ में है। एक ही शरीर में वो ब्रह्मा जी जैसा लंबी आयु दे सकते हैं, जैसे मार्कंडेय ऋषि को मिली है, या लोमस जी को। लोमस जी सबसे दीर्घजीवी है। एक बार लोमस जी कहीं सभा में आए हुए थे ऋषियों के, तो उनसे ऋषियों ने पूछा कि लोमस जी आप आश्रम क्यों नहीं बना लेते हैं। तो वो कहे कि अरे जिंदगी का क्या ठिकान, क्या ठिकाना है। वो ब्रह्मा जी से भी ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन कहते हैं जिंदगी का क्या ठिकाना है, क्षण भर का जीवन है, इसलिए घर नहीं बांध रहा। तो उनके छाती पर कुछ रोए शीर्ण हुए थे, लोम शीर्ण हुए थे। लोम कहते हैं जो रोआ होता है। लय और रम में भेद नहीं माना जाता है संस्कृत में, रोम कहिए चाहे लोम कहिए। तो लोमस या रोमस उनका नाम है। तो लोम का थे रोम और स का थे शीर्ण। उनके छाती पर कुछ केस शीर्ण होकर गिर गए। कब एक रोआ गिरता है, जब एक ब्रह्मा जी बीतते तो एक रोआ झड़ता है लोमस इतने दीर्घ जीवी। ऐसे ऐसे दीर्घ जीवी, ऐसा भगवान की कृपा से है, भगवान के भजन से होता है। एक ब्रह्मा जी हटते हैं अपने पद से तो एक रोआ गिरता है। यही ब्रह्मा जी की गिनती होती है उनके छाती के केस रोम्स। ये बिल्कुल शास्त्र की बात है, ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। और ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैं कुटिया नहीं बनाऊंगा, जीवन क्षण भंगुर है। और हम लोग क्षण भर मच्छर की तरह, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन घर बांधते हैं, यह पढ़ते हैं, हमारा 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 हमारा, ये तुम्हारा। लेकिन एक दिन घर से बाहर किया जाएगा, अपने ही बच्चे घर से बाहर करेंगे, दूसरे नहीं। जो घर में आता है उसमें यही कहता है क्या देरी है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। रानी वादिन की सुधीति जे जा दिन ले चल हो, उस दिन की भी याद करनी चाहिए कि एक दिन हम चले जाएंगे। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए, जाना तो निश्चित है। और जाते समय कुछ भी ले नहीं जाएंगे, और ना तो बेटा को ईमेल नंबर देंगे कि इस पर भेज देना कुछ सामान या खबर भेजना, कोई पता नहीं रहेगा। जीवित हैं तो इतना ममता है, इतना मोह है, ये वो ऐसे वैसे। तो लंबी आयु भगवान की कृपा से मिलती है, मिली है कई भक्तों को। और बपुह यौवन, भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान से कोई भक्त चाहे कि हम सदा जवान रहें तो रहेगा, कभी बुढ़ापा नहीं आ सकती। और अभीष्ट बपु, अभीष्ट बपु का अर्थ है कि सुंदर बलवान स्वस्थ देह और युवक, अथवा अभीष्ट वस्तुएं जो भी चाहे मिल सकती हैं। और अतुल्य लक्ष्मी, ऐसा धन भगवान दे सकते हैं जिसकी तुलना कहीं संसार में नहीं, अपार धन दे सकते हैं अनुपम, जैसे ध्रुव महाराज को दिए। और देव भू रसा, स्वर्ग की संपत्ति, रसातल पताल की संपत्तियां और इस पृथ्वी तल की संपत्ति, सकल योग गुणा, समस्त अष्ट सिद्धियां योग की, और परम ज्ञान जिसे मुक्ति मिलती है। हे अनंत, आप सब कुछ दे देते हैं, फिर मनुष्यों को अपने शत्रु पर विजय आप दे दें, ये कौन बड़ी बात है। सपत्न जया विराश, आप सब कुछ दे सकते हैं। इस तरह से एक प्रकार से माता अदिति के मन का मनोरथ प्रकट हो रहा है शब्दों में। यही सब सिद्धांत हैं जो समाज में वास्तव में बताना चाहिए, तब लोग भगवान का भजन करेंगे। यदि वास्तव में बताया जाए कि भगवान का भजन करने से, कृष्ण की शरण लेने से आयु बढ़ जाती है, धन बहुत मिलता है और स्वर्ग की संपत्ति मिलती है, इस पताल पताल की पृथ्वी की आदमी वोट में जीत सकता है और मिनिस्टर बन सकता है, बड़ा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ये बताया जाए तो लोग भजन जरूर करें। लेकिन शुरू में ही हम लोग ये बताते हैं माया है, सब छोड़ो ये करो, तो कहते हैं बस बस जाओ, हमको माया नहीं है। देखते हैं दूसरे लोग कैसे प्रचार करते हैं। कहते हैं यह व्यक्ति ही ओनली वे, क्राइस्ट इज द ओनली वे, आप शरण लीजिए, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्राइस्ट लव्स यू। और वे कहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा, आपको आरोग्य मिलेगा, धन मिलेगा, ये मिलेगा, उनके आशीर्वाद। हम लोग प्रचार करते हैं तो कहते हैं भगवान के आशीर्वाद से सब छूट जाएगा आपका, नहीं इसीलिए लोग डर जाते हैं, तब ऐसे खतरनाक भगवान का क्यों भजन। पर वास्तविकता यह, आपकी कृपा से आप प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ देते हैं मनुष्यों को, और फिर शत्रु पर विजय, सपत्न पर विजय दे देने कौन बड़ी बात। इस तरह से माता अदिति ने स्तुति किया भगवान की। तब भगवान बोले, माँ बोल चुकी, तो भगवान बोल रहे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अदित्यैव स्तुतो राजन् भगवान पुष्करे क्षण क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां इति होवाच भारत। भगवान पुष्करे क्षण, कमल नयन भगवान अदिति की यह बात सुनकर उससे इस प्रकार बोले। पुष्करे क्षण क्यों कहा जा रहा है? पुष्कर का अर्थ कमल और इक्षण का अर्थ आंख। भगवान का दर्शन करते हैं, उनको आंखों को देखते ही माता अदिति शीतल हो गई, सारी जलन चली गई, इसका ये भाव। जब भक्त भगवान के आंखों को देखता है तो उसकी सारी जलन मिट जाती है उसी समय। भगवान इतना स्नेह से देखते हैं और इतनी सुंदर दृष्टि और स्नेह भरी दृष्टि होती है कि भक्त निहाल हो जाते हैं। माता अदिति बार बार भगवान के नेत्रों पर देख रही थी, इतने अद्भुत और स्नेह से युक्त नेत्र हैं। तो पुष्करे क्षण भगवान बोले, और सर्वभूतानं क्षेत्रज्ञ, यह क्यों सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यद्यपि माता अदिति ने कुछ भी मांगा नहीं भगवान से, कहा नहीं डायरेक्ट, पर भगवान तो सर्वभूतानं क्षेत्रज्ञ, समस्त जीवों के अंतर्जामी हैं, हृदय में ही रहते हैं, और इच्छाएं अभिलाषाएं हृदय में उठती हैं। तो भगवान तो सब कुछ जान गए बिना कहे कि माँ ये अदिति क्या चाहती है, भगवान जान गए इस बात को। अतः वे बड़े स्नेह से बोले, देव मात, श्री भगवान वाच, भगवान अब बोल रहे हैं, देव मातः भवत्या मे विज्ञातं चिरकांक्षितं। हे देव माता, यह संबोधन है जो इंद्र जैसे देवता को जन्म दी है, वह मां बहुत महान है। भगवान संबोधन कर रहे हैं, देव माता, देवा नाम माता, माता देवताओं की माँ भवत्याः सपत्ने हृत श्रीणाम चावितानं स्वधामत पुत्राणाम चिरकांक्षितं मे मया विज्ञातम्। हे देव माता आदिति जी, अपने पुत्रों के विषय में आपकी जो चिरकाल से आकांक्षा है वो तो मैं विज्ञातम, मुझे विज्ञात है, विशेषण ज्ञातम, मुझे पूरा पूरा पता है आपके हृदय में बहुत काल से क्या आकांक्षा है, क्या मनोरथ है, मुझे ज्ञात है। आप कहें या न कहें मुझे सब पता है, क्या ज्ञात है, क्या इच्छा है। तो भगवान कहते हैं आपके लिए अपने प्रति कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सपत्नेर हृत स्त्रीणाम स्थानम चारितानम पुत्राणाम, जो आपके पुत्र घर से भगा दिए गए हैं, उनका धन छीन लिया गया है और उनका धन छीन लिया गया है, उन्हें जो परास्त कर दिया गया है, उन पुत्रों के विषय में जो आपकी चिरकांक्षितम बहुत काल से लालसा है वो मुझे ज्ञात। तो माता अदिति तो चुपचाप थी, अब वो भगवान स्वयं कह रहे क्या इच्छा है, आपकी यही इच्छा है ना कि तान विनिर्जित समरे दुर्मदान असुरार्षभान प्रति लब्ध जय श्री भी पुत्र इच्छा सुपाशित। तुम्हारी यही इच्छा है ना कि तुम्हारे पुत्र युद्ध में शत्रुओं को मार दें, जीत जाएं और राज्य पालें, श्री पालें और उन पुत्रों के साथ तुम बैठो, उन पुत्रों के बीच में रहो, जय प्राप्त किए हुए, स्वर्ग प्राप्त किए हुए और असुरों को युद्ध में मार देने वाले पुत्रों के बीच में तुम रहो, तुम्हारी यही इच्छा है ना। देखिए कितनी घोर इच्छा है अदिति की, फिर भी भगवान प्रसन्न है उसकी भक्ति से। इस तरह की इच्छा होना कि हमारे पुत्र स्वर्ग जीत ले और बाकी जो शत्रु हैं वे मार दिए जाए, दोनों इच्छा है। केवल यही इच्छा नहीं है अदिति की कि हमारे पुत्र स्वर्ग के सम्राट बन जाए, यह अभी इच्छा है कि इस समय जो स्वर्ग दखल किए हैं वे सब मारे जाए। इतने दूषित हृदय से भी उसने भजन किया था और फिर भी भगवान प्रकट हुए। जो थोड़ा सा भजन चालू कीजिए तो लोग कहते हैं ये क्या हरे कृष्ण कर रहे हो, मन कहाँ घूम रहा है। अरे मन कहीं घूमे, भजन तो किया ना। भगवान कह रहे हैं कि माता अदिति का मन ये आकांक्षा रखा था कि असुर सब मारे जाए, ये तो आकांक्षा बहुत अच्छी आकांक्षा नहीं है, बहुत क्रोध से भरा हुआ मन है। और ऐसी स्त्री ने भी भगवान को पाया और भगवान को क्या पाया, भगवान को पुत्र रूप में पाया। यही इच्छा केवल रहती कि हमारे पुत्र राजा बने और असुर हटा दिए जाएं, वो जीवित रहें तब तो कुछ ठीक था, लेकिन वे सब मारे जाएं और विजय प्राप्त अपने पुत्रों के साथ मैं स्वर्ग में रहूं, आपकी यही इच्छा है ना, मैं जानता हूं। इंद्र ज्येष्ठ स्वतनेर हतानाम युधि विद्रिशाम स्त्रियो रुदंती राशाद्य द्रष्टु मिच्छसि दुखिता। आप चाहती हो कि तुम्हारे इंद्र आदि पुत्रों के द्वारा सारे शत्रु मारे जाएं और उन शत्रुओं की स्त्रियां अपने अपने पतियों के लाश के पास आकर के रोवे, यही चाहती हो ना, उन स्त्रियों को रोती हुई देखना चाहती हो ना। बहुत ये नीच बात है वास्तव में, लेकिन भगवान से क्या छिपा है, भगवान सब हृदय की बात जानते हैं। हम लोग भी जो शुद्ध भक्ति का नाटक करते हैं, कृष्ण को सब मालूम है, वो यहीं पर है कि क्या क्या लालसा है। यहां तक होता है कि कभी कोई कुछ दक्षिणा देने लगे तो कहते नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, और यहां तो इच्छा भभक रही है कि और मिले। तो कृष्ण जानते हैं है ना, कृष्ण सब जानते हैं, ऐसी इच्छा है कि वे शत्रु मारे जाएं। किसके द्वारा? इंद्र ज्येष्ठ स्वतनय, इंद्र ज्येष्ठ जैसा तई पुत्र, इंद्र जिनमें प्रधान है उन पुत्रों के द्वारा शत्रु मारे जाए और उनकी स्त्रियां रोवे, उनको रोती हुई तुम देखना चाहती हो। इतना सौतिया डा है अदिति के हृदय में, मतलब दीति के पुत्र या दीति की संतान मारे जाए तो दीति रोवे या उनकी स्त्रियां रोवे, सब रोवे, इसको आप देखना चाहती हो। भगवान तो हृदय में सब पढ़ करके कह रहे थे, पहले सुखदेव गोस्वामी ने नहीं कहा था, लेकिन भगवान तो सब देख कर बोल रहे हैं कि ऐसा तुम चाहती हो। इस तरह से पोल खोल रहे हैं भगवान। आत्मजान सुसमृद्धांश तम प्रत्याहृत जसह स्त्रिय नाक पृष्ठम अधिष्ठाय क्रीड़तो द्रष्टुमिच्छसि। और यह भी चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र सब समृद्धि प्राप्त कर लें, जस और लोक सब प्राप्त कर लें, और नाक पृष्ठम अधिष्ठाय स्वर्ग में रह करके खूब सुख भोगे, विहार करें, यही चाहती हो ना? ये मुझे सब पता है। लेकिन माता अदिति को इसके लिए कोई शोक नहीं हुआ कि भगवान हमारे मन के भाव को जानते हैं। अरे उनसे क्या लज्जा करनी है जो सब कुछ जानता है ना? एक कहावत है हम लोग के यहाँ भोजपुरी में, मैं कहावत तो नहीं कहूंगा, लेकिन कोई स्त्री कहती है कि जो पति साथ ही रात दिन रहता है उससे क्या लज्जा है, वो क्या नहीं जानता है। तो इस तरह से भगवान क्या नहीं जानते हैं हम लोगों के। वेदा हम समती तानी वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन, सब कुछ जानते हैं। अगर वे प्रभु कहें कि तुम्हारे हृदय में ये लालसा है या ये दूषित लालसा है, ऐसी भावना है, तो इसमें लज्जा की क्या बात है? जैसे नव धर्म बच्चा है और माँ के गोद में है तो उसको लज्जा क्या, माँ से क्या छिपा है, भगवान से क्या लज्जा? भगवान अगर कहें तो ये तो अच्छा है कि भगवान हमारे विषय में कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा, लेकिन भगवान ने कह दिया कि ये होगा नहीं, आपके पुत्र राजा बनेंगे लेकिन असुर एक भी मारे नहीं जाएंगे, तो वो इच्छा नहीं पूरी होगी। पुत्र राजा हो जाएंगे लेकिन असुर नहीं मारे जाएंगे, ये भगवान कहते हैं। प्रायो धुना ते सुरजोथ नाथा अपारणीया इति देवी ने मति। हे देवी, पयोव्रत का पालन करके तुम बहुत चमक रही हो, दिव्य बन गई हो, जो चमक है उसको देवी कहते हैं या देव। देवता बहुत चमकते हैं, उनका शरीर दिव्य होता है, तो पयोव्रत का पालन करने से तुम में बहुत तेज बढ़ गया है। लेकिन हे देवी, इस समय अधुना असुर युद्ध ना था प्रायः अपारणीय, इस समय असुर सेनापतियों को हराना मुश्किल कठिन, उनको परास्त नहीं किया जा सकता, उनको अभिभूत नहीं किया जा सकता। इति मे मति, मेरा निर्णय है, मैं देख रहा हूं कि इस समय उनको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जत्ते नुकूले स्वर्ग विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददात। इस समय ब्राह्मण उनके अनुकूल है, समर्थ ब्राह्मण अथवा ईश्वर जिनके अनुकूल है वे ब्राह्मण उनकी रक्षा कर रहे हैं दैत्यों की। ब्राह्मणों के अनुकूल है ईश्वर, अथवा ईश्वर का ही अर्थ समर्थ, ब्राह्मण वेद आदि से समर्थ हैं और वे समर्थ ब्राह्मण दैत्यों की रक्षा कर रहे हैं, अतः दैत्यों को इस समय परास्त करना असंभव, यह मैंने निर्णय किया। यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या आप भी नहीं परास्त कर सकते हैं? भगवान कहते हैं